सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हाँ, मैं डर रही हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, क्या कहूँ और किससे कहूँ। ये मेरी पहली सेक्स कहानी है और इसमें सब कुछ बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा वादा है कि अगली हकीकत में मैं आपको सारी बातें खुलकर बताऊँगी और जो आप सुनना चाहते हो और एहसास करना चाहते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं 23 साल की हूँ। साधारण से दिखती हूँ, ठीक ठाक शरीर है, लंबाई भी ठीक ठाक है। आज से 4 साल पहले की ये बात है, मैंने नया नया कॉलेज शुरू किया था, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। मैं बहुत खुश थी, घर में सब खुश थे, मैं सीए बनना चाहती थी, पढ़ाई में होनहार थी तो सबको मुझ पर भरोसा भी था। मैं बुलंदशहर जैसे छोटे नगर से दिल्ली आई थी, यहाँ सब अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया चल नहीं रही, भाग रही है। मैं दिल्ली में 3 लड़कियों के साथ एक रूम किराए पर लेकर रहती थी। पढ़ाई में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था जिसके कारण मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप मारा। मेरी इस सफलता से सब लोग बहुत खुश थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर जो मेरे साथ हुआ वो बताऊंगी। उस लड़के का नाम संजय था, रोज़ मेरा पीछा करता था पर मैं उसे नहीं दिखती थी। एक बार शाम को मैं रूम के बाहर ऐसे टहल रही थी कि उसी समय कार ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी। वो संजय की कार थी, मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। संजय बाहर निकल कर आया और आते ही उसने मुझे गोद में उठा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। राह चलते लोग संजय को भरा बुला कह रहे थे, कुछ तो उसे मारने भी आ रहे थे। तो सबको बोला मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ये मेरी परिचित है। कुछ समय बाद मैं उसकी गाड़ी में थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बार बार बस यही बोल रहा था, सीमा तुम ठीक हो, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे सर पर पैर पर पट्टी बंधी थी और मेरी बराबर की कुर्सी पर वो सो रहा था। जैसे मैं उठने को ही वो जग गया। कैसी हो सीमा, दर्द तो नहीं हो रहा? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मेरा नाम संजय है और मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुमने ही टक्कर मारी थी ना मुझे? सीमा मैंने नहीं मारी थी, गलती से टकरा गया। शायद वो सही बोल रहा था क्योंकि मैं कॉल पर थी और कॉल का हॉर्न नहीं सुन पाई थी। खैर, अपने रूम की लड़कियों को कॉल किया और उनके साथ घर चली गई। फिर एक हफ्ते के बाद कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। कॉलेज में संजय मिला। अब दर्द कैसा है सीमा? अचानक से पता नहीं कब वो मेरे बराबर चलने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। हर बात लिखूंगी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बस इतना बता रही हूँ कि संजय का साथ जब से मिला था जवानी की आग भड़क गई, मुझे अपनी जोत के लिए मजबूत लड़न की तलाश थी। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे दोस्त बन गए, एक दूसरे के नंबर ले लिए और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। फिर जब उसने मुझे अपने माँ बाप से मिलने चलने के लिए घर कहा तो मैं अपना परिवार भूल उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने माँ पापा को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं मिला। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने कहा मम्मी शायद पड़ोस में गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। उसकी जुबान में सादगी थी जिसका जवाब मैंने हाँ में सर हिला कर दिया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कब हमारे बीच किस शुरू हुआ, कब हम बिना कपड़ों के हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैं शर्म से आंखें बंद कर रखी थी और अब अपने नीचे उसका लौड़ा महसूस कर रही थी। मेरे लिए उस वक्त वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लौड़ा था। आधे घंटे तो मैंने खून की बूंदों से सनी हुई दर से तड़पती हुई रोती रही, पर मुझे मेरे प्यार पर भरोसा था। 2 घंटे तक संजय ने हर तरह से मेरी जूत चोदी, इतनी चुदाई कि खड़ा होना तो दूर की बात, मैं लेट गई और मेरे पैर कांप रहे थे, पर मुझे अपने पैर पर पूरा भरोसा था। सेक्स करने के बाद उसने बताया कि उसके मॉम डैड 5 दिन के लिए बाहर गए हैं, पर वो मुझसे प्यार करता है और हम शादी करेंगे, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया कि वो घर में अकेला है। वैसे उसके साथ मुझे भी अच्छा लगा था। 3 दिन मैं उसके साथ रही, 3 दिन तक हम दोनों ने एक भी कपड़ा नहीं पहना। जहाँ मन करता वहाँ हम खुलकर सेक्स करते। मुझे संजय के लड़ से चूत चुदवा कर बहुत मज़ा आता। 4th दिन वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ संजय? जवाब में उसका मुँह मेरे चुच्चों में घुस गया और रोने लगा। तुम ठीक तो हो ना, मुझे बताओ क्या हुआ? उसने कहा विनोद भैया ने सब देख लिया और रिकॉर्ड कर लिया। कौन विनोद भैया? क्या देख लिया, क्या रिकॉर्ड कर लिया? विनोद भैया मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने सीसीटीवी से सब देख लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि सबको बता दूंगा तू मेरे पीछे से घर में रंडी लाया है और कॉलेज भी नहीं जाता, पूरा दिन नंगा घूमता और रंडी चोटता है। रंडी रंडी तो बनी चुकी थी, कहाँ कहाँ जुदाई नहीं की हमने, एक कोना भी तो नहीं छोड़ा। अब क्या होगा संजू? वो बोल रहे हैं एक बार अगर तुम उसके साथ सेक्स कर लोगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो सबको दिखा देंगे कि मेरा लंच छोटा है और हम दोनों को बदनाम कर देंगे। और ये कहकर वो तेज तेज रोने लगा। मैं सोचने लगी छोटा सा, मेरी तो इससे जान निकल जाती है, इसे अपना लंच छोटा लगता है। मेरी चित को अब बड़े लंच को देखने और उसे चुदने की ललक हो गई। मैंने कहा तुम चुप हो जाओ, तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जेठ जी से बोलो जो करना है मेरे साथ करें, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन संजय के भैया आए, वो बाहर रो रहा था और वो मुझे कमरे में ले गए। मैंने देखा संजू ठीक ही बोल रहा था, उसका लंच छोटा है, भैया का लंच तो मेरी दोनों मुट्ठियों में भी नहीं आ रहा था। पर संजू को कुछ ना हो इसलिए मैंने सांस रुकने तक पूरा लंच मुंह में लिया। सच में बड़े लंच को अपनी चूत में लेने में इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई कि संजय का भाई का लंच भी मुझे चूत में लेने का मन बन गया। फिर जब संजय के भाई का बड़ा लंच मेरी चूत में गया तो मेरी छाती फटने को हो गई, पर मैंने तब भी उफ नहीं किया। उन्होंने 4 घंटे तक मेरी चूत भी चोदी और कांड भी मारी। मैं मस्त हो गई। दोस्तों आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैंने आधी आंखें खोलकर संजू से अभी कहा ही था कि आवाज़ मेरी कान में सुनाई दी जो मैंने सोचा भी नहीं था। बहन की लौड़ी, क्या मैं रंडी से शादी करूँगा? साली तू धंधे वाली है तो औकात में रहे माँ की लौड़ी। संजू ने तेवर बदल दिए। मैंने तब भी संजू को समझाया, पर संजू मैंने तो सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया, अब रंडिया मुझे बचाएंगी। सुन मेरी बात, तेरा एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया था जिससे तेरे नज़दीक आऊँ, तेरा मेरा कोई भाई नहीं है, बस तू गजब की माल है, ये सबको मेरी तेरी चूत दिखाऊंगा। हमारी चुदाई जब इन लोगों ने देखी तो तेरी चूत के दीवाने हो गए, और ये सब मैंने ड्रामा किया था। मुझे संजय से नफरत हो गई थी, मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया। बुखार से मुझे बेहोशी हो रही थी और उसी हालत में मैं अपने कपड़े ढूंढ रही थी। कपड़े ढूंढ रही है रांड, जब तक मेरा लंच शांत नहीं करेगी तब तक कपड़े नहीं मिलेंगे। सुन बे भड़वे, मादर जो छोटे लंच का सैंपल, अपना लंच अपनी माँ बहन की गांड में पेलना। चुन मैं रंडी हूँ ना, तो रंडी को किससे शर्म, अब तू देख तो रंडी की परिभाषा। मैं अपने कमरे से निकलकर भाग गया। फिर मैंने उसकी जो शर्ट पहन रखी थी उससे अपने शरीर को ढका और बाहर चल दी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, दुनिया वाले गंदी नज़र से देख रहे थे, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। एक ऑटो वाले ने मुझे घर तक छोड़ा और मेरी चूत मारी। मैं 3 दिन तक बुखार में रही, मैंने अपना इलाज करवाया, मैंने रंडी बनकर उससे बदला लेने की सोची। अब मैं प्रोफेशनल रंडी बन गई हूँ। उसने अपना रूम और नंबर बदला, जिसकी वजह से मैं कभी उसे बदला नहीं ले पाई। फिर मैंने सब भूलकर नौकरी करने की सोची। एक आदमी मेरा सीट बन गया जो हर दूसरे दिन मेरे पास आता था। उसने मेरी जॉब अपने ऑफिस में लगवाई, वहाँ लड़कों को फंस कर उन्हें जिगोलो प्लेबॉय का रजिस्ट्रेशन करवाने लगी। उन्हें हमें लड़कियों से सेक्स करवाने का लालच देना होता था। इस तरह से अब मैं सेठ की पर्सनल रांड बन चुकी हूँ। मैंने अपने परिवार से संपर्क खत्म कर दिया। सेठ के पास मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के सुख मिलते हैं। आज मैंने पैसे भी कमाए और हुस्न भी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आज भी संजू की तलाश है। आप इसे मेरी पहली सेक्स कहानी कहें या जीवन की सच्चाई, जो भी है सब कुछ बिल्कुल सच सच है। बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी।